एफेसियों, एफेसुस चर्च को लिखा गया पत्र। एफेसियों अध्याय एक। यीशु मसीह के पवित्र और विश्वसनीय लोगों के नाम जो एफेसुस में हैं, जिनके लिए परमेश्वर पिता की इच्छा से पौलुस यीशु मसीह का प्रेरित है। हमारे स्वामी यीशु मसीह और स्वर्गिक पिता की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की बड़ाई हो, जिन्होंने हमें स्वर्गिक स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से भर दिया है। जिस तरह से उन्होंने संसार की नींव डाले जाने से पहले हमें अपने में चुन लिया था, ताकि हम उनके सामने पवित्र और बिना किसी दोष के ठहराए जाएं। अपनी इच्छा के भले उद्देश्य के अनुसार पहले ही से उन्होंने प्रेम में यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने गोद लिए हुए बच्चों की तरह ठहराया है। यह उनकी असीम कृपा और महिमा की बड़ाई के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने हमें अपने प्रिय में स्वीकार किया है। उन्हीं में हमें उनके खून से आजादी यानी अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के कारण है, जिसे उन्होंने सारे ज्ञान और समझ के साथ हमारे ऊपर उढ़ेल दिया है। जिस भले लक्ष्य की कामना परमेश्वर पिता ने पहले से कर रखी थी, उसके अनुसार उन्होंने हम पर अपनी इच्छा के रहस्य को प्रकट किया। ऐसा इसलिए है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की सब बातों को समयों के पूरा हो जाने तक मसीह में सब कुछ इकट्ठा करें। साथ ही साथ यीशु मसीह के कारण हमने परमेश्वर पिता से मीरास पाई है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही से चुन लिया और यह उनकी इच्छा से है, ताकि हम जिन्होंने पहले से मसीह में भरोसा किया उनकी महिमा से भरे परमेश्वर की बड़ाई करें। जब तुमने सत्य का वचन सुना, तब विश्वास करके प्रतिज्ञा की आत्मा की मुहर प्राप्त की। वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने की तरह इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर के खरीदे हुए छुटकारा पाएं और परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। यह एक और कारण है कि हम परमेश्वर की महानता की बड़ाई करें। इसलिए मसीह पर तुम्हारे विश्वास और पवित्र लोगों के लिए जो तुम्हारा प्यार है, उसे सुनकर मैं भी तुम्हारे लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने से नहीं रुकता। मेरी विनती यह है कि हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर महिमा के पिता तुम्हें आत्मिक ज्ञान और प्रकाश और परमेश्वर के ज्ञान में तुम्हें बुद्धि और ज्योति दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, ताकि तुम जानो कि तुम्हारे बुलाए जाने की आशा और पवित्र लोगों के लिए उनकी महिमा में मीरास की दौलत क्या है, और हम विश्वास करने वालों के लिए उनकी अपार शक्ति की बढ़ती जाने वाली महानता क्या है। यह उनकी शक्ति के प्रभाव के उस काम के कारण है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया, कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठाकर और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ बैठाकर, और यीशु को अभी और आने वाले समयों के किसी भी शासन, अधिकार, शक्ति, प्रभुता और नाम के बहुत ऊपर ठहराया। सब कुछ उनके पैरों के नीचे करके उन्हें प्रमुख ठहराकर चर्च को दे दिया। चर्च उनकी देह है, मसीह से भरपूर है, जो अपनी उपस्थिति से सभी स्थानों को भर देते हैं। इफिसियों अध्याय दो। तुम जो अपने अपराधों और दुष्टता में मरे हुए थे, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया। पिछले समयों में तुम इस संसार के तौर तरीकों, आकाश के अधिकार के शासक यानी वह आत्मा जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, उसी के अनुसार जीवन जीते थे। और हम सभी उन्हीं में से थे जिनका जीवन पुराने स्वभाव, मन की लालसाओं और उनको पूरा करने में बीत रहा था, और दूसरों के समान स्वभाव से परमेश्वर की सजा के अधीन थे। लेकिन परमेश्वर ने, जो दया में धनी है, अपने बड़े प्रेम की वजह से हमें प्यार दिया। उस समय भी जब हम अपनी दुष्टता की स्थिति में मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिला दिया तथा हमें अपने साथ उठाकर स्वर्गिक स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठा दिया, ताकि आने वाले युगों में वह यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे लिए दयालु हैं, उस असीम कृपा के बढ़ते हुए महान धन को दिखा सकें। इसी अनुग्रह और विश्वास के द्वारा से तुम्हें मुक्ति मिली है। यह तुम्हारी किसी योग्यता से नहीं, यह मुक्ति परमेश्वर की तरफ से इनाम है। यह कर्मों से नहीं मिलती है, ताकि कोई घमंड न कर सके। हम उनकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए ठहराया है। इसलिए याद करो कि पहले तुम शारीरिक रीति से खतना वालों के द्वारा गैर यहूदी और बिना खतना वाले कहलाते थे। उस समय तुम मसीह के बिना इसराइल से बाहर और प्रतिज्ञा की वाचा के लिए अनजान और इस जीवन में बिना परमेश्वर पिता के और आशाहीन थे। तुम जो एक समय बहुत दूर थे, अब यीशु मसीह और उन्हीं के खून के द्वारा पास लाए गए हो। यीशु के द्वारा ही मेल है जिन्होंने दोनों को एक किया और हमारे बीच बंटवारा करने वाली दीवार को ढा दिया। जिस यहूदी नियम शास्त्र की व्यवस्था ने गैर यहूदियों को यहूदियों से अलग कर रखा था, उसे यीशु ने अपनी मौत से खत्म कर डाला, इन दोनों के बीच मेल करके अपने में एक नया इंसान बनाया। यह भी कि यीशु क्रूस द्वारा परमेश्वर के साथ एक देह में सुलह कराएं, जिसकी वजह से उन्होंने दुश्मनी को खत्म कर डाला। तुम गैर यहूदी जो दूर थे और यहूदी जो पास थे, उन सबको खुशी की खबर दी है, ताकि उन्हीं के द्वारा पिता तक पवित्र आत्मा से हम दोनों की पहुंच हो। इसलिए अब तुम विदेशी और अजनबी नहीं रहे, लेकिन पवित्र लोगों के संगी नागरिक हो और परमेश्वर पिता के घराने के हो। यीशु मसीह जिस इमारत का मुख्य पत्थर है, उन्हीं में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर तुम बनाए गए हो। यीशु में पूरी इमारत बनी है और उन्हीं में विश्वासी लोग जुड़कर पवित्र भवन बनते जाते हैं। तुम भी एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए एक ऐसा निवास स्थान बनाए जाते हो जहां परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा रहते हैं। इफिसियों अध्याय 3। इसी कारणवश मैं पौलुस तुम गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का कैदी हूं, इसलिए कि तुमने परमेश्वर की उस कृपा के दिए जाने के संबंध में सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दी गई। मसीह के रहस्य को कैसे उन्होंने स्वर्गिक ज्ञान के द्वारा मुझे बतलाया, ताकि इस चिट्ठी को पढ़ने पर इस छिपी बात के विषय में मेरी समझ को तुम जान पाओ, जैसा अभी आत्मा द्वारा उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। पहले के युगों में यह भेद मनुष्यों पर प्रकट नहीं किया गया था। वो यह कि यहूदियों के साथ एक ही देह में गैर यहूदी मीरास सदस्यता और सुसमाचार द्वारा उन्हीं वायदों में हिस्सा पाएं। जिस सुसमाचार का मैं सेवक बना, उस परमेश्वर पिता की सामर्थ के असर के अनुसार जो मुझे उनकी शक्ति के प्रभावशाली रूप से कार्य करने की वजह से दिया गया, मैं सभी पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ। मुझे यह कृपा मिली कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अथाह संपत्ति के बारे में बता सकूं और सभी को यह दिखा दूं कि दुनिया की शुरुआत से सृजनहार में छुपी सच्चाई का महत्व क्या है, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया था, ताकि अभी परमेश्वर के तमाम ज्ञान को मंडली के द्वारा आकाश में प्रधानों और अधिकारियों को बताया जा सके, जिसे उन्होंने हमारे स्वामी यीशु मसीह में अपनी अनंतकालिक मनसा को पूरा करने के लिए हमें ठहराया था, जिसमें उन पर विश्वास करने से हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारे जो दुख मुझे हैं, उनके कारण हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए आदर की बात है। इसलिए मैं उस पिता के सामने अपने घुटने टेकता हूं जिनके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि उनकी महिमा के धन के अनुसार वह ऐसा होने दें कि तुम भीतरी जीवन में उनकी आत्मा की मदद से मजबूत किए जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे दिलों में बसें, ताकि परमेश्वरीय प्यार में गहराई से जड़ पकड़ते जाओ और सभी पवित्र लोगों के साथ समझ सको कि इस प्यार की चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई क्या है। यह भी कि मसीह के उस प्यार को जान सको जो समझ से बाहर है, ताकि तुम परमेश्वर पिता की सारी भरपूरी से भर जाओ। अब जो ऐसे सामर्थी हैं कि हमारे जीवन में काम करने वाली शक्ति के द्वारा हमारे मांगने या सोचने से कहीं अधिक करने के योग्य हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का सम्मान चर्च में और मसीह यीशु में होता रहे। इफिसियों अध्याय 4। इसलिए मैं मसीह यीशु का कैदी तुमसे यह कहता हूं कि अपनी बुलाहट के लायक जीवन जियो, पूरी दीनता नम्रता और धीरज के साथ प्यार में एक दूसरे की सहो। मेल के बंधन में पवित्र आत्मा की एकता को बनाए रखने की कोशिश करो। देह एक ही है, एक आत्मा है, ठीक उसी तरह तुम अपनी बुलाहट की एक आशा में बुलाए गए हो। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है, एक परमेश्वर जो सबके पिता हैं, जो सबके ऊपर, सबके बीच और सब में हैं। लेकिन मसीह ने अपनी उदारता की माप से हम में से हर एक को शर्तहीन कृपा दी है, इसलिए वो कहता है,
जब वो ऊंचाई पर चढ़े उन्होंने गुलामी को बांधने में अगुवाई की और लोगों को इनाम दिए।
उनके चढ़ने का क्या मतलब है? ये कि वह पहले पृथ्वी के निचले भागों में भी उतरे। वह जो नीचे उतरे वही हैं जो आसमान से ऊपर चले गए ताकि सब कुछ में समा जाए। वह यीशु ही थे जिन्होंने अलग अलग लोगों को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार देने वाले, पास्टर और शिक्षक ठहराकर दे दिया ताकि पवित्र लोग सेवा के लिए तैयार किए जाएं और मसीह की देह उन्नति करती जाए। जब तक हम विश्वास की एकता, परमेश्वर पिता के बेटे के पूर्ण ज्ञान, बुद्धिमान व्यक्ति बनने और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम बच्चों के समान इधर से उधर तमाम सिद्धांतों के झोंकों से लोगों की चालाकी, धूर्तता और धोखाधड़ी से हिलाए डुलाए न जाएं, लेकिन प्यार के साथ सच बोलते हुए मसीह के समान जो चर्च के प्रधान हैं, हर तरह से और अधिक बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर बढ़ती जाती है। जैसे हर एक भाग अपना अपना काम करता है, देह प्रेम में उन्नति करती जाती है। मैं यह मसीह में जोर देकर इसलिए ऐलान करता हूं कि तुम दूसरों की तरह बेकार के सोच विचार का जीवन न बिताओ, क्योंकि उस नासमझी की वजह से जो उनमें है और मन की सख्ती की वजह से उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और वे परमेश्वर की जिंदगी से अलग हो गए हैं। वे हर तरह से सुन्न हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को हर तरह की गंदगी और कामुकता के सुपुर्द कर दिया है। तुमने मसीह से ऐसा करना नहीं सीखा है, इसलिए कि उनके बारे में तुमने सब कुछ सुना है और उस सत्य को जो यीशु में है जान लिया है। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं की वजह से भ्रष्ट है, और अपने मन की आत्मा में नए होते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की समानता में सच्चे खरेपन और पवित्रता में बनाया गया है। इसलिए झूठ को हटाकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के सदस्य हैं। गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह मत करो। सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। शैतान को कुछ भी मौका मत दो। जो इंसान पहले चोरी किया करता था वह आगे को ऐसा न करे। इसके बजाय उसको अपने हाथ से कुछ भलाई करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ हो। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले, लेकिन वही जो अच्छी है और तरक्की के लिए फायदेमंद है, ऐसी बात जो सुनने वालों के जीवन में भलाई लाए। तुम परमेश्वर पिता के आत्मा को दुख न पहुंचाओ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम पर छुड़ाए जाने वाले दिन के लिए मोहर लगाई गई है। सारी कड़वाहट, तैश में आना, क्रोध, झगड़ा, बुरा बोलना और चोट पहुंचाने वाली बातें तुमसे दूर ही रहें, बल्कि तुम तरस से भरे रहो और कृपा करने वाले बनो। तुम एक दूसरे को माफ करने वाले बनो, जैसा परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हें माफ किया है। इफिसियों अध्याय 5। इसलिए प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर की बात मानने वाले बनो, जिस तरह से मसीह ने हमसे प्रेम किया और खुद को खुशबूदार इत्र की तरह परमेश्वर के लिए एक भेंट और बलिदान के रूप में चढ़ा दिया, उसी तरह प्यार मोहब्बत का जीवन जियो। जैसा कि पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे बीच अनैतिक यौन संबंध, सभी तरह की अशुद्धता या लालच जैसी बातें सुनने में भी ना आए, और तुम्हारे बीच गंदी और बेवकूफी की बातें, भद्दा मजाक जो उचित नहीं है न हो, बल्कि धन्यवाद दिया जाना हो। पर तुम ये जानते हो कि यौन पाप में लिप्त व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति और लालची इंसान की मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सेदारी नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हें खोखली बातों से धोखा न दे, क्योंकि इसी कारणवश परमेश्वर की सजा आज्ञा न मानने वालों पर आती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हिस्सेदार न बनो, क्योंकि एक समय था जब तुम अंधियारा थे, लेकिन अब यीशु में उजाला हो, इसलिए उजाले की संतान की तरह जीवन जियो। इसलिए कि रोशनी का असर सब तरह की अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई में है, यह मालूम करते हुए कि यीशु को क्या भाता है, अंधियारे के बेकार के कामों के साथ किसी तरह की साझेदारी मत रखना, लेकिन उन्हें सबके सामने प्रकट करना, क्योंकि उन बातों के बारे में जिन्हें वे छिप कर करते हैं मुंह से कहने में भी शर्म आती है, लेकिन वे सभी बातें जिनका खुलासा किया जाता है रोशनी के द्वारा दिखाई देती हैं। इसलिए कि जो भेद खोलने वाली है वो रोशनी ही है, इसलिए लिखा है,
तुम जो सो रहे हो जाग जाओ और मरे हुओं में से जी उठो और यीशु की रोशनी तुम्हें मिल जाएगी।
इसलिए गौर से देखो कि तुम बेवकूफों की तरह नहीं लेकिन अक्लमंदों की तरह चलते हो। समय की कीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए नादान मत बनो, बुद्धिमानी से समझो कि यीशु की इच्छा क्या है। नशे से दूर रहो, क्योंकि इससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। आपस में एक दूसरे से और मन में यीशु के लिए भजन गीत और आत्मिक गीत गाते और गुनगुनाते रहो। हमारे स्वामी यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को हमेशा सब बातों में धन्यवाद देते रहो और परमेश्वर के डर में एक दूसरे के अधीन होते जाओ। पत्नियों, अपने पतियों की अधीनता में ऐसे रहो जैसे यीशु मसीह के, क्योंकि पति भी पत्नी का प्रधान है। जिस तरह से मसीह चर्च के प्रधान है, इसी देह के वह बचाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से चर्च मसीह की अधीनता स्वीकार करता है, पत्नियों को भी सभी बातों में अपने पति की माननी चाहिए। पतियों, अपनी पत्नियों से प्यार करो जिस तरह से यीशु ने चर्च से प्यार किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, ताकि वह उसे वचन के पानी से धोकर शुद्ध करे और मसीह अपने आप के लिए एक तेज से भरा चर्च तैयार करें जिसमें दाग या झुर्रियां न हों, लेकिन पवित्र और निष्कलंक ठहरे। इसलिए पतियों को अपनी पत्नियों से इस तरह प्यार करना चाहिए जैसे वे अपनी देह से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्यार करता है वह खुद से प्यार करता है। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी देह से नफरत नहीं करता है, लेकिन वह उसकी देखभाल करता है जैसे यीशु चर्च के साथ करते हैं, क्योंकि हम उनकी देह के भाग हैं।
इसलिए एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से जोड़ा जाएगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे।
यह एक बड़ा रहस्य है, लेकिन मैं तो मसीह और चर्च के बारे में कह रहा हूँ। फिर भी तुम में से हर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखे जैसा वह खुद अपने आप से रखता है। पत्नी को भी अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। इफिसियों अध्याय 6। बच्चों, यीशु में अपनी माताजी और अपने पिताजी का कहना मानो, क्योंकि ऐसा करना सही है।
अपने पिता और माता का आदर करना
ऐसी पहली आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ है। वो वायदा यह है कि
तुम्हारा भला हो और इस दुनिया में तुम लंबे समय तक जीवित रहो।
बच्चे वालों, अपने बच्चों को गुस्सा करने के लिए मत उकसाओ, लेकिन यीशु की सहायता से पालन पोषण और डांट डपट करो। हे नौकरों, डरते कांपते और मन की सच्चाई से अपने मालिक की आज्ञा का पालन इस तरह करो जैसे कि यीशु के सेवक हो। तुम दिखाने या लोगों को खुश करने के लिए सेवा मत करो, लेकिन मसीह के गुलाम की तरह उन्हीं की सेवा समझकर दिल से परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सेवा करो। यह जानते हुए कि जो व्यक्ति भला करता है, वो चाहे नौकरी करता हो या खुद का व्यवसाय चला रहा हो, उसे यीशु मेहनताना देंगे। मालिको, तुम अपने नौकरों को धमकी मत दो, उनके साथ भला व्यवहार करो। यह जान लो कि तुम्हारे मालिक परमेश्वर स्वर्ग में हैं और वे किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। अंत में मेरे भाइयों, प्रभु में और उनकी शक्ति के प्रभाव से मजबूत होते जाओ। परमेश्वर के सभी हथियारों को पहन लो ताकि तुम शैतान की बुरी चालों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हम इंसान के विरोध में नहीं हैं, परंतु आकाश मंडल के प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से संघर्ष करते हैं। इसलिए तुम परमेश्वर के सभी हथियारों को स्वीकार कर लो, ताकि तुम बुरे दिन में सब कुछ का सामना करने के बाद स्थिर रहो। इसलिए सच्चाई की पेटी से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर मजबूत बने रहना, जिससे तुम दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। मुक्ति का टोप और पवित्र आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। सब तरह की विनतियों के साथ हर समय पवित्र लोगों के लिए निरंतर धीरज से प्रार्थना करते रहो, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, इसलिए कि बोलने का अवसर मिलने पर सुसमाचार के रहस्य को साहस से बताने के लिए मैं अपना मुंह खोल सकूं। इसी कारणवश मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। प्रार्थना करो ताकि जिस तरह से हिम्मत से मुझे संदेश देना चाहिए मैं दे सकूं। तुखिकुस, जो प्रिय भाई और मसीह का विश्वसनीय सेवक है, सब कुछ तुम्हें बताएगा, ताकि तुम मेरी हालत जान सको कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी वजह से मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारी हालत जानो और वह तुम्हारे दिलों की हिम्मत बढ़ाए। हमारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की ओर से शांति और विश्वास के साथ प्रेम प्राप्त हो। जो लोग सच्चाई से यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उनके ऊपर कृपा बनी रहे।